بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا متروں، کارکرم کا شبھارمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیابان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیرے کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। तो दोस्तों, आज शुक्रवार है, मेहर की 28 और अक्टूबर की 21 तारीख है। साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 24 तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे और उसके बाद आपकी सेवा में कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्र संसार और सभा की अंत में आपकी सेवा में पेश किया जाएगा कार्यक्रम विज्ञान की डगर। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी से सुनेंगे। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इस्लामी क्रांति का भविष्य अतीत से ज्यादा उज्जवल है, इमाम जुमा तेहरान आयतुल्ला खातमी। ईरान में उपद्रव बढ़ाने के लिए हो रहा है प्रतिबंधों का प्रयोग, गरीब आबादी। यूक्रेन को बनाया जा रहा है बलि का बकरा, रूस। और भारत में हेट स्पीच के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कार्रवाई का दिया निर्देश। तो अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेहरान के इमाम जुमा ने कहा है कि इस्लामी क्रांति का भविष्य अतीत से ज्यादा उज्जवल है। उन्होंने कहा है कि दुश्मनों द्वारा की जाने वाली साजिशें कभी भी इस्लामी क्रांति के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकती। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के अस्थाई इमाम जुमा आयतुल्ला सैयद अहमद खातमी ने हालिया दिनों में देश में होने वाले दंगों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि ईरान के दुश्मनों ने हमारे राष्ट्र के संबंध में बड़ी बड़ी साजिशों को तैयार कर रखा था, लेकिन उनके सारे षड्यंत्र मिट्टी में मिल गए। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र को लेकर दुश्मन जो सपने देख रहा था वो एक झटके में ही चकनाचूर हो गए। आयतुल्ला खातमी ने कहा कि ईश्वर की कृपा से दुश्मन अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह विफल हो गया है। उन्होंने कहा कि जब जब दुश्मन ने इस्लामी क्रांति के खिलाफ आग भड़काने की कोशिश की है, तब तब अल्लाह ने उस आग को बुझाया है। आयतुल्ला खातमी ने कहा कि जब तक हम अपने धर्म और इस्लामी क्रांति के प्रति पूरी दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे, तब तक दुश्मनों की साजिशें और उनके द्वारा ईरानी राष्ट्र पर किए जाने वाले अत्याचारों का सिलसिला जारी रहेगा। काजिम गरीबाबादी का कहना है कि अमेरिका और यूरोप ईरान में उपद्रव और अशांति बढ़ाने के लिए प्रतिबंधों का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान की न्यायपालिका के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप सचिव ने कहा है कि देश के शत्रु हर दिन ईरान के भीतर कोई ना कोई नया संकट उत्पन्न करने के प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि देश के दुश्मन कभी कॉलेज और स्कूल का रुख करते हैं तो कभी यूनिवर्सिटी का और कभी वे जेल का भी रुख करते हैं। काजिम गरीब आबादी ने यह बात तेहरान के एवेंजेल की घटना के संदर्भ में कही। उन्होंने बताया कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के शत्रु षड्यंत्रों और दुष्प्रचारों की मशीन को बंद नहीं होना देना चाहते, वे इस पर 24 घंटे काम करते हैं। गरीब आबादी के अनुसार ये किसी छोटे से मुद्दे को तिल का ताड़ बना देते हैं। उनका कहना था कि एवेंजेल के बारे में शत्रुओं के पास पहले से योजना तैयार थी, हालांकि संबंधित अधिकारियों की सूझबूझ और देश के संचार माध्यमों की सक्रियता के कारण वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। उनकी योजना तो बहुत गहरी थी किंतु व्यवहारिक नहीं हो पाई। सऊदी अरब के एयरपोर्टों पर मौजूद ड्यूटी फ्री शॉप में शराब बेचने और पीने की इजाजत दिए जाने पर आले सऊद शासन गंभीरता से विचार कर रहा है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अरब बिजनेस वेबसाइट के हवाले से ये बात सामने आई है कि आले सऊद शासन लंबे समय से सऊदी अरब में शराब से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है। आले सऊद शासन शराब को आम किए जाने की अपनी योजना के पहले चरण की शुरुआत इस देश के एयरपोर्टों से करना चाहता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुत जल्द सऊदी अरब के एयरपोर्टों पर मौजूद ड्यूटी फ्री दुकानों में शराब को बिकते हुए देखा जा सकता है। साथ ही शराब का सेवन करने वाले लोगों को इस बात की इजाजत होगी कि वो वहां बैठकर उसको पी सकें। फिलिस्तीन, ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने दूतावास को बैतुल मुकद्दस न ले जाने के फैसले का स्वागत करते हुए जॉर्डन की संसद ने इसकी सराहना की है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री वोंग ने मंगलवार को कहा था कि देश की सरकार ने पिछली सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया है कि बैतुल मुकद्दस इसराइल की राजधानी है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने बैतुल मुकद्दस में अपना दूतावास स्थानांतरित करने का फैसला टाल दिया है। इस संबंध में जॉर्डन की संसद ने एक बयान जारी करके घोषणा की है कि ये काम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान सरकार की गंभीरता को दर्शाता है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के प्रति उसके सम्मान का सूचक है। रूस ने कहा है कि हमसे मुकाबले के लिए नेटो यूक्रेन को बलि का बकरा बनाए हुए है। मास्को का कहना है कि रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन को तबाह किया जा रहा है। यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग संगठनों में रूस के प्रतिनिधि ने बताया कि रूस का मुकाबला करने के लिए नेटो ने यूक्रेन को दांव पर लगा रखा है। मैक्सिमन बाया किविच ने कहा कि ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि यूक्रेन की आड़ में यूरोपीय वास्तव में रूस का मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नेटो की प्रतिनिधि यूक्रेन युद्ध अंत तक जारी रहे ताकि रूस का मुकाबला किया जाए, चाहे यूक्रेन तबाही क्यों ना हो जाए। फ्रांस प्रेस के अनुसार रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने गुरुवार को अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से ईरान के विरुद्ध नए प्रतिबंधों के संदर्भ में कहा है कि रूस को ड्रोन देने जैसे निराधार दावे के आधार पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध निंदनीय हैं। मारिया जाखारोवा ने इस बयान के एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने एक संवाददाता सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध के लिए ईरान द्वारा रूस को ड्रोन भेजे जाने के दावे को निराधार बताया था। उधर अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने कुछ पश्चिमी संचार माध्यमों के इस दावे की पुष्टि नहीं की है कि ईरान रूस को ड्रोन विमान भेजना चाहता है। याद रहे कि पिछले कुछ समय से अमेरिका सहित पश्चिमी देश ईरान पर रूस को ड्रोन भेजने का आरोप लगाते रहे हैं, जिसका खंडन ईरान के अधिकारियों की ओर से किया जाता रहा है। फ्रांस में महंगाई से परेशान होकर इस देश की जनता राष्ट्रपति एम्यूनुएल मैक्रों की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। इसके साथ ही लोग जलवायु संकट को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों की सरकार के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों में बढ़ती महंगाई को लेकर भारी गुस्सा है। 3 हफ्तों से जारी हड़ताल के चलते लोगों को ईंधन की दिक्कत हो रही है। लोगों ने बढ़ती महंगाई को लेकर अपना गुस्सा व्यक्त किया है और राष्ट्रपति मैक्रों की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। प्रदर्शन का आयोजन करने वालों ने महंगाई के साथ ही जलवायु परिवर्तन का भी मुद्दा उठाया है। वहीं फ्रांसीसी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोलों समेत इलेक्ट्रिक शॉक तक के हमले किए हैं। पुलिसी कार्रवाई में भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घायल होने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने गुरुवार को निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रेस के इस्तीफे की घोषणा के बाद देश में आम चुनाव कराने की बात कही है। ब्रिटेन में निचले सदन में लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने कहा है कि इधर कुछ समय से ब्रिटेन की जो राजनीतिक स्थिति है उसे जारी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को बेहतर चाहिए। ब्रिटेन अब कंजर्वेटिव पार्टी की अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें अब आम चुनाव की आवश्यकता है। अब रुख करते हैं भारत का। हेट स्पीच को लेकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करे। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से हेट स्पीच के मामलों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इस बीच हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है या तो वो कार्रवाई कीजिए नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि हेट स्पीच में लिप्त लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हेट स्पीच को लेकर आरोप गंभीर हैं। भारत का संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पेश करता है। देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों के बारे में आईपीसी में उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद निष्क्रियता है। हमें मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना होगा। अगर कोई शिकायत ना हो तो भी पुलिस स्वेच्छा संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लापरवाही हुई तो असरों पर अवमानना की कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के समाचारों का यहीं पर विराम देते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, इमरान खान अयोग्य करार दिए गए और भारत नियंत्रित कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री से सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया। तो सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस्तीफे का विषय। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस 6 हफ्तों के बाद त्याग पत्र देने पर मजबूर हो गईं। पिछले दिनों उनकी सरकार एक आर्थिक पैकेज लेकर आई थी जिसने बाजार में उथल पुथल मचा दी थी। उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के केवल 45 दिन बाद ही अपने पद से त्याग पत्र دینا پڑا، کیونکہ ان کی پارٹی کنزرویٹو آپس میں ہی وبھاجت ہو گئی تھی اور ان کے نیتریتو کو لے کر سوال اٹھنے لگے تھے۔ ایک سمیکشا پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی قائم رضوی۔
پچھلے کچھ دنوں سے جاری اتھل پتھل کے بیچ برٹین کی پردھان منتری نے اپنے پد سے تیاگ پتر دے دیا۔ لسٹرس نے ستہ سنبھالنے کے محض 45 دنوں کے بعد اپنا پد تیاگ دیا۔ لسٹرس نے گروار کو کہا کہ وہ پردھان منتری کے طور پر استعفی دے رہی ہیں۔ غورطلب ہے کہ بیتے دنوں ان کی سرکار ایک آرتھک کارکرم لے کر آئی تھی جس نے بازار میں اتھل پتھل مچا دی تھی۔ انہیں پردھان منتری نیوکت کیے جانے کے محض 6 ہفتوں کے بعد ہی ان کی کنزرویٹو پارٹی وبھاجت ہو گئی تھی۔ پارٹی میں نیتریتو کا چناؤ اگلے سپتاہ پورا کر لیا جائے گا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ آفس کے دروازے کے باہر بات کرتے ہوئے ٹرس نے سویکارا کہ جب وہ کنزرویٹو نیتا کی دوڑ میں تھی تو انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ انہیں پورا نہیں کر سکی اور اپنی پارٹی کا وشواس انہوں نے کھو دیا۔ انہوں نے کہا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ مانتی ہوں کہ میں جنا دیش پورا نہیں کر سکتی جس کے لیے مجھے کنزرویٹو پارٹی دوارا چنا گیا تھا، اس لیے میں نے مہاراج چارلز سے بات کر کے انہیں سوچت کر دیا ہے کہ میں کنزرویٹو پارٹی کے نیتا کے طور پر استعفی دے رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صبح میں 1922 سمیتی کے ادھیکش سر گرہم بریڈی سے ملی تھی، ہم اس بات پر سہمت ہوئے تھے کہ نیتتو کا چناؤ اگلے سپتاہ کے بھیتر پورا کر لیا جائے گا، یہ سنشچت کرے گا کہ ہم اپنی وتیہ یوجناؤں کو پورا کرنے اور اپنے دیش کی آرتھک استھرتا اور راشٹری سرکشا کو بنائے رکھنے کے راستے پر بنے رہیں گے۔ ٹرس کیول 45 دنوں کے لیے ہی برٹین کی پردھان منتری رہی، کسی بھی برٹش پردھان منتری کا یہ سب سے چھوٹا کاری کال ہے۔ ٹرس برٹین کی تیسری مہیلا پردھان منتری تھی۔ 6 ستمبر کو دیونگت مہارانی ایلیزابیتھ دوتیہ نے کنزرویٹو پارٹی کی نیتا لس ٹرس کو اوپچارک روپ سے برٹین کا نیا پردھان منتری نیوکت کیا تھا۔ 5 ستمبر کو ودیش منتری رہی ٹرس نے برٹین کے پردھان منتری پد کی دوڑ میں شامل پورو وت منتری رشی سنک کو ہرا دیا تھا۔ پردھان منتری کے روپ میں 6 سپتاہوں میں ٹرس کو اپنے لگ بھگ سبھی نیتی گت کارکرموں کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ وہیں پچھلے شکروار کو انہوں نے اپنی سرکار کے 4 سب سے ورشٹھ منتریوں میں سے 2 کو کھو دیا۔ بدھوار کو ہی بھارتی مول کی برٹش گرہ منتری بریور مین نے لندن میں منتری استریہ سنچار کے لیے اپنے نجی ای میل کا استعمال کرنے کی غلطی کے بعد پد سے استعفی دے دیا۔ پچھلے شکروار کو کواسی کوارٹیک کو وت منتری کے پد سے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کے اتراادھیکاری وت منتری جیرمی ہنٹ نے سوموار کو سرکار کے منی بجٹ میں کٹوتی کر دی تھی۔ اس قدم سے پردھان منتری کے نیتتو کے لیے سنکٹ اور بڑھ گیا تھا۔ ایک ورشٹھ منتری کے استعفے اور سنسد کے نچلے سدن میں سدسیوں دوارا جم کر آلوچنا کے گروار کے گھٹنا کرم کے بعد ٹرس کے پد پر بنے رہنے کو لے کر سنشے پیدا ہو گیا تھا۔ غورطلب ہے کہ پچھلے مہینے سرکار نے ایک آرتھک یوجنا پیش کی تھی جس کے اسفل ہونے کے کارن آرتھک اتھل پتھل اور راجنیتک سنکٹ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد ٹرس کو وت منتری بدلنے کے علاوہ اپنی کئی نیتیوں کو بھی الٹنا پڑا، ساتھ ہی ان کے کارکرم کے دوران ستارڑھ کنزرویٹو پارٹی میں انوشاسن ہینتا بھی دیکھنے کو ملی۔ کنزرویٹو پارٹی کے کئی نیتاؤں کا کہنا تھا کہ ٹرس کو پردھان منتری پد سے استعفی دے دینا چاہیے تھا۔ استعفے سے پہلے ایسی خبریں بھی تھیں کہ جنمت سرویکشنوں میں لیبر پارٹی کو بڑی بڑھت ملتی دکھائی دے رہی ہے، جس کے مد نظر کنزرویٹو پارٹی کے کئی نیتاؤں کا ماننا تھا کہ ٹرس کو ہٹا کر ہی کوئی امید کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اس بات کو لے کر بٹے ہوئے تھے کہ انہیں کیسے ہٹایا جائے۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کارکرم راجنیتک چرچا۔
بھارت نینترت کشمیر کی پورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی سے پرشاسن نے کہا ہے کہ سرکاری بنگلہ چھوڑ دیں کیونکہ وہ سرکار کی سمپتی ہے۔ اور بھی انیہ وشیوں کے ساتھ شری نگر سے ہمارے ساتھی سپتے محمد حسن۔
مین سٹریم گٹھوں کے گٹھ بندھن گپکار الائنس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی موجودہ سرکار صرف اور صرف دباؤ کی راجنیتی کرنا جانتی ہے، پرنتو انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ شری نگر میں گپکار الائنس کے پروکتا نے کہا کہ بھوتپورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی، جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ادھیکش ہے، کو اپنا نواس خالی کرنے کے جو آدیش سامنے آئے ہیں اسے یہ سنکیت مل رہے ہیں کہ جو نئی دہلی کی لائن ٹو نہیں کرے گا اس کو ایسی سچویشن کا سامنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، پرنتو یہ راجنیتی نہیں ہے جو جموں کشمیر میں کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ جموں کشمیر پرشاسن نے بھوتپورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی سے کہا ہے کہ وہ آفیشیل ریزیڈنس کو ویکیٹ کریں، وہ سرکاری پراپرٹی ہے۔ اس بیچ جموں کشمیر پرشاسن نے کہا ہے کہ انہوں نے لوگوں سے ملنے اور آؤٹ ریچ کے تحت کیندریہ منتریوں کو جموں کشمیر میں لانے کا جو پروگرام آرمبھ کر رکھا ہے اس کے اچھے سنکیت مل رہے ہیں، اور اسی حوالے سے جموں کے راجوری میں ایک آؤٹ ریچ پروگرام کے دوران کیندریہ منتریوں نے عام ناگرکوں سے بات کی اور ان کی سمسیاؤں کو سلجھانے کے لیے اسی سمے آرڈر بھی جاری کر دیے۔ اس اوسر پر انہوں نے کہا
کاریوں کے انوگریشن کیے، جن پرتندھیوں سے اور لوگوں سے ملاقات کا میرا کارکرم ہے۔ آج یہاں بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرتا، چنے ہوئے جن پرتندھی اور کچھ ریٹائرڈ ادھیکاری کرمچاریوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ لوگوں نے 70 سال کی اپنی پیڑا کے بارے میں بھی بتایا، اور آج بھارت سرکار سے ماننیہ مودی جی سے ان کو بہت ساری امید ہے۔ انہوں نے اپنے گاؤں کے اور اس چھیتر کی جو ڈیمانڈ ہے، جو سمسیاں ہیں، ان کے سمبندھ میں جانکاری دیا ہے۔ میں ابھی ادھیکاریوں سے اس کے سمبندھ میں بات کروں گی، اور جو ڈیمانڈ ان لوگوں نے دیا ہے اس کو میں بھارت سرکار کے سبھی منترالے تک پہنچاؤں گی، اور یہی کام کرنے کے لیے مجھے ماننیہ پردھان منتری جی نے اور ماننیہ گرہ منتری جی نے بھیجا ہے۔
اس بیچ جموں کشمیر میں ہنسا گھٹناؤں کا کرم جاری ہے۔ دکشنی کشمیر میں آگیات بندوق داریوں کے ہاتھوں ایک ویکتی کے ہتات ہونے کی سوچنا ہے۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اور اب چلتے ہیں پاکستان۔ پاکستان کے مکھیہ چناؤ آیوگ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پورو پردھان منتری عمران خان کو آیوگیہ گھوشت کر دیا ہے۔ ایک سمیکشا کے ساتھ ساتھی روش زیدی۔
پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان کو چناؤ آیوگ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ چناؤ آیوگ نے سمپتی چھپانے کے آروپ میں شکروار کو پورو پردھان منتری عمران خان کو آیوگ گھوشت کر دیا۔ دراصل سترارول گٹھ بندھن سرکار کے سانسدوں نے اگست میں پاکستان کے چناؤ آیوگ کے سمکش میں عمران خان کے خلاف ایک معاملہ دائر کیا تھا، جس میں انہوں نے راج کے بھنڈار سے، جسے توشے خانے کہا جاتا ہے، رعایتی مول پر خریدے گئے اپہاروں کی بکری سے آئے کا خلاصہ کرنے میں وفل رہنے کے لیے انہیں آیوگ کرنے کی مانگ کی تھی۔ پاکستان کے مکھ چناؤ آیوکت سکندر سلطان راجہ کی ادھیکشتا والی 4 سدسیہ پیٹھ نے اسلام آباد میں ای سی پی سچیوالے میں عمران خان کے خلاف فیصلے کی گھوشنا کی۔ چناؤ آیوگ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو جھوٹا بیان جمع کرانے پر آرٹیکل 63(1)(p) کے انترگت آیوگ قرار دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے انترگت عمران خان کو نیشنل اسمبلی کے ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کی سیٹ خالی قرار دے کر چناؤ آیوگ اپ چناؤ آیوجت کرائے گا۔ چناؤ آیوگ نے اپنے فیصلے میں عمران خان کو جن پرتندھی کے لیے آیوگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اپنی سمپتی کے بارے میں سچائی چھپانے اور سچائی پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹے بیان جمع کرائے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے پر عمران خان جن پرتندھتو کے یوگ نہیں رہے۔ چناؤ آیوگ نے اپنے فیصلے میں عمران خان کے ورودھ فوجداری کی کارروائی کرنے کی بھی سفارش کی ہے۔ عمران خان کے ورودھ چناؤ آیوگ کا فیصلہ آتے ہی پورے पाकिस्तान में पीटीआई के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए और सरकार तथा चुनाव आयोग के विरुद्ध नारे लगाए। ज्ञात रहे कि इमरान खान ने तुशेखाने रेफरेंस के संबंध में 7 सितंबर को चुनाव आयोग में अपना लिखित जवाब जमा कराया था। जवाब के अनुसार 1 अगस्त 2018 से 31 सितंबर 2021 के दौरान प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को 58 तोहफे दिए गए। बताया जाता है कि इन उपहारों में ज्यादातर फूलों के गुलदान, मेजपोश, सजावटी सामान, दीवार, वॉलेट, परफ्यूम, फ्रेम, घड़ी, पेन, अंगूठी, ब्रेसलेट और लॉकेट्स इत्यादि सामान शामिल है। जवाब में बताया गया है कि इन सब उपहारों और तोहफों में केवल 14 चीजें ऐसी थीं जिनके मूल्य 30,000 रुपए से ज्यादा थे, जिसे उन्होंने आधिकारिक रूप से पैसे जमा करा के खरीदा। अपने जवाब में इमरान खान ने स्वीकार किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में 4 तोहफे बेचे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का कहना था कि उन्होंने 2,16,00,000 रुपए की अदायगी के बाद सरकारी खजाने से तोहफे बेचकर लगभग 5,80,00,000 रुपए हासिल किए।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आप कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा हमारे साथी अख्तर अब्बास से सुन रहे थे। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी
और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
दीदी, आज भी आपके ईमेल, आपके कमेंट्स और आपके विचार कार्यक्रम पत्र संसार में शामिल करेंगे।
जी, तो सबसे पहले रजनीश कुमार का ईमेल है ये। महदीय मठ करनौल भारत रेडियो श्रोता संघ से हैं ये।
जी,
लिखते हैं कि आजकल आपके प्रसारण हम नियमित पूर्वक सुन रहे हैं और रेडियो पर 25 मीटर बैंड यानी 11,860 किलो हर्ट्ज पर प्रसारण साफ सुनाई दे रहे हैं। शुक्रवार को विश्व समाचार और राजनीतिक चर्चा के साथ साथ पत्र संसार विज्ञान की डगर का कार्यक्रम सुना, जिसमें पत्र संसार के तहत भिलाई छत्तीसगढ़ के आनंद मोहन जी और गोराडी भागलपुर के हेमंत कुमार जी के द्वारा पत्रों में लिखे गए विचार को सुना और साथ ही साथ विज्ञान की डगर के तहत विज्ञान के क्षेत्र में ईरान में हो रही तरक्की और लिस्मेनियासिस रोग क्या है और इसके होने के कारण क्या है, इस समस्या के बारे में चर्चा की गई, जो मुझे काफ़ी ज्ञानवर्धक लगी। इसके लिए आप सभी को कोटि सा धन्यवाद।
बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम पत्र संसार में। और जिस विस्तार पूर्वक, जिस ध्यान से आप कार्यक्रमों को सुन रहे हैं और उस पर अपनी टिप्पणी और अपने विचार दे रहे हैं, वो हमारे लिए उत्साहवर्धक है। हम आपके आभारी हैं। पत्राचार इसी तरह से बनाए रखिए और सुझावों का सिलसिला भी जारी रखिए।
जी, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे लिखते हैं कि हमारी ओर से रेडियो तेहरान हिंदी सेवा की पूरी टीम और सभी श्रोता बंधुओं को मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद और बधाइयाँ।
बहुत बहुत आपको भी बधाई नागनपुरे जी। हमारे नियमित श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं और एक ये रिश्ता दीदी बहुत पुराना चला आ रहा है कार्यक्रम पत्र संसार के साथ भी और पूरे रेडियो हिंदी रेडियो तेहरान के साथ ही ये रिश्ता पुराना चला आ रहा है। हमारे बहुत से इस तरह के श्रोता हैं जो हमसे अब लगभग 2 दशक से ज़्यादा का समय हो रहा है कि जुड़े हुए हैं और ये 7 हफ्ते कायम है। नागनपुरे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत बधाई। श्रोताओ, कार्यक्रम के इस भाग में अब हम सुनेंगे एक सांस्कृतिक खबर। दीदी हर हफ्ते के लिए एक खबर चुन के लाती हैं जो हमेशा बड़ी रोचक और साथ ही ज्ञानवर्धक होती है।
जी, इस बार भी बहुत ही रोचक है। हम देखने जा रहे हैं ईरान में सबसे पुरानी मानव बस्ती कहाँ है।
जी,
कज़विन के उत्तर पश्चिमी प्रांत आवाज शहर में कलेकोर्द केव यानी कलेकोर्द गुफा में ईरानी और फ्रांसीसी पुरातत्व टीमों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए हाल ही के उत्खनन के परिणाम बताते हैं कि गुफा के आसपास के सांस्कृतिक भंडार 400,000 से भी अधिक वर्षों से हैं। ये ईरान में खोजी गई सबसे पुरानी मानव बस्ती है। उत्खनन का नेतृत्व करने वाले हमीद वहादती नस्साब ने कहा कि ईरान और फ्रांसीसी टीमों द्वारा संयुक्त उत्खनन का ये तीसरा सत्र है जो पेरिस में मानव विज्ञान संग्रहालय के प्रोफेसर गिल्स ब्रिलन के सहयोग से आयोजित किया गया था। वहादती नस्साब ने खुदाई के इस सीजन में परतों की उम्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सांस्कृतिक सामग्री के डेटिंग के परिणाम जो पेरिस में मानव विज्ञान संग्रहालय के एक प्रयोगशाला में भेजे गए थे 160,000 210,000 और 400,000 से अधिक उम्र की तीन बस्तियां कल्लेफोर्ड के गुफा में मौजूद हैं
जी,
जो इसे ईरान का सबसे प्राचीन पुरातत्व स्थल बनाती है। वहादती नस्साब ने कहा कि नवीनतम निष्कर्ष और गुफा में खोजे गए औजारों से पता चलता है कि गुफा अन्य मनुष्यों के लिए एक बस्ती के रूप में थी। अब तक दो प्रकार के विलुप्त प्रागैतिहासिक घोड़े, हिरण, भूरा भालू और गेंडा क्षेत्र में खोजी गई पशु प्रजातियों में से हैं। खुदाई के पर्यवेक्षक ने कहा कि आधुनिक मनुष्य का निचला जबड़ा और विलुप्त लकड़बग्घा की खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा जिसे लकड़बग्घा गुफा कहा जाता है, जो 11,000 से 500,000 वर्षों के बीच पृथ्वी पर मौजूद अन्य खोजों में से थे और पहली बार ईरान से रिपोर्ट की गई है।
जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी रोचक और ज्ञानवर्धक खबर के लिए। कुछ भौगोलिक स्थितियां कुछ जगहों पर मुझे लगता है कि और ज्यादा इसके बारे में बताने की
खुदाई चल रही है।
श्रोताओ, संस्कृति से जुड़ी इस खबर के बाद अब बारी है कमेंट्स की। आप जो कमेंट्स करते हैं हमारी वेबसाइट में खबरों पर या दूसरी सामग्रियों पर।
जी, ईरान में दंगाइयों का समर्थन, अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध, इस पर हुसैन मेहदी लिखते हैं ये विश्व को सब मिशन के लिए मजबूर करने के बारे में है, न केवल ईरान, रूस, चीन, यूरोप, अरब, वेनेजुएला, इथोपिया और हर जगह। जिस समय वे इस तेल मुद्दे पर सऊदी अरब को धमका रहे हैं, वैसे यमन पर समझौता न करने का आदेश दे रहे हैं, जिसे उन्होंने यूक्रेन को चलते रहने का आदेश दिया था। यदि अमेरिका अमेरिकी उपभोक्ताओं के बारे में चिंतित था और वे भोजन और ईंधन के लिए क्या भुगतान करते हैं, तो ये यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं करता।
जी, बहुत सही बात कही है। अमेरिका ने कई ऐसे कदम उठाए हैं कि अब तो खुद अमेरिका के जो घटक हैं यूरोपीय देश, वो भी शिकायतें करने लगे हैं कि अमेरिका हालात का गलत फ़ायदा उठा रहा है। यूरोपीय देशों को अमेरिका ने गैस देने की बात कही है, चूँकि यूरोपीय देशों में गैस का संकट पैदा हो गया है, लेकिन गैस जो वो दे रहा है वो 4 गुना ज़्यादा कीमत पर दे रहा है। यानी अमेरिकन जिस कीमत में गैस लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं, यूरोपियंस को 4 गुना ज़्यादा कीमत पर अमेरिका देना चाहता है, जिस पर यूरोपियों ने भी एतराज़ किया है। तो यूरोपीय तो अमेरिका के घटक को बड़े करीबी घटक समझे जाते हैं, तो जब उनके साथ अमेरिका का ये रवैया है तो दूसरे देशों के साथ उसका क्या रवैया हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी और अहम बात यह है कि दुनिया की आँखें खुल रही हैं, अमेरिका की वास्तविकता से दुनिया ज़्यादा वाकिफ होती जा रही है।
अपनी सीमा पर 3,000 आतंकियों को सहन नहीं करेंगे, जनरल बाकरी। इस पर अली इराकी लिखते हैं, किराए के उन आतंकवादियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ उत्कृष्ट उपक्रम और शानदार स्टैंड के लिए ईरान को बधाई।
जी, इस्लामी गणतंत्र ईरान ने
इस दौरान जब हालिया हफ्तों में ईरान में कई जगहों पर अशांति की घटनाएं हुई, प्रदर्शन शुरू हुए और प्रदर्शन हिंसक हो गए और फिर उसमें विदेशी तत्व, बाहरी तत्व और अलगाववादी संगठन, आतंकी संगठन जो कि कई दशकों से ईरान के खिलाफ सक्रिय हैं, वो कूद पड़े और उन्होंने अपना एजेंडा आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस बीच ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ा अहम कारनामा और बहुत साहसिक कदम एक ये उठाया कि ईरान से लगे इराकी कुर्दिस्तान इलाके में आतंकी संगठनों और अलगाववादी आतंकी संगठनों के जो ठिकाने थे उन पर मिसाइलों की बरसात कर दी, क्योंकि ये आतंकी उन ठिकानों के भीतर से बैठ के ईरान में अशांति फैला रहे थे, हथियार सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कार्रवाई बहुत बड़ी रही और इसका बड़ा असर हुआ, जिस पर ईरान की आर्म्ड फोर्सेस बधाई की पात्र हैं। और श्रोता, अब बारी है आप में से एक सामान्य श्रोता के विचार सुनने की। दीदी हर हफ्ते किसी न किसी श्रोता का चयन करती हैं और हम उनके मूल्यवान विचार सुनते हैं और उससे अवगत होते हैं।
जी, तो ये है हमारे बहुत ही पुराने श्रोता छत्तीसगढ़ पंधी से साहू
जी।
नमस्कार, मैं साहू ग्राम पोस्ट पंधी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से IRIB रेडियो तेहरान हिंदी सेवा का एक श्रोता हूँ। मैं पहले प्रसारण रेडियो पर सुना करता था, परंतु अब मोबाइल ऐप से सुनता हूँ। मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सुनना सहज, सरल और सुविधाजनक तो है, किंतु वह आनंद, वह संतुष्टि जो रेडियो से मिलती थी वह ऐप से नहीं मिलती है। जो सुख एवं आत्मीयता पोस्ट कार्ड में है वो ईमेल में नहीं है। रेडियो तेहरान की बात करूं तो समाचार, राजनीतिक चर्चा, आजकल एवं विश्व दर्पण में घटनाओं के विवेचनात्मक, ठोस, विस्तृत एवं निर्भीक प्रस्तुति पत्रकारिता का एक उदाहरण है। अन्य स्रोतों से भारतीय कश्मीर पर एक शब्द भी नहीं मिलता, किंतु रेडियो तेहरान से भारतीय कश्मीर पर नित्य रिपोर्टिंग का काम रेडियो तेहरान का भारतीय कश्मीर के प्रति रुचि को दर्शाता है। धर्म ईश्वर के कथनों पर रुचि लेता हूँ। कुरान ईश्वरीय चमत्कार सुनकर शांति मिलती है, किंतु समाचार सुनकर दुखी हो जाता हूँ। जैसे कि सामान्य ज्ञान में बताया जाता है कि नेपाल ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा, किंतु यह भ्रम भी आज का इतिहास ने तोड़ दिया। अंत में यही कहना चाहूँगा कि रेडियो तेहरान के सभी उद्घोषक समर्पित, परिश्रमी, मृदु एवं मधुभाषी है। रेडियो तेहरान में शुद्ध हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग एवं शब्दों के शुद्ध उच्चारण किया जाता है, इसके लिए रेडियो तेहरान बधाई के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद
जी। दीदी, तो बड़े अच्छे विचार सुने हमने साहू जी के। हमारे पास थोड़ा सा समय बच गया है जिसमें आप कोई कमेंट शामिल कर सकती हैं।
जी, राष्ट्रपति ने बताया ईरान ने किन देशों की किन हालात में मदद की। इस पर जहरा आवेदी कहती हैं, ईरान के कुछ दुश्मन इस शांतिपूर्ण राष्ट्र को किसी भी चीज़ से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास किसी अन्य प्रकार का आतंकवाद नहीं है जिसकी उन्होंने ईरान के खिलाफ कोशिश नहीं की है। इतनी गहरी अपनी कब्र खोदते रहते हैं। ईरान एक शांति दूत देश है और शांति भंग करने वाला देश नहीं है।
जी, ये इस्लामी जमहूरी ईरान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जिस इलाके में स्थित है, इसे बड़ा संवेदनशील इलाका माना जाता है। संवेदनशील इसलिए कि यहाँ पर संसाधन बड़े महत्वपूर्ण हैं और बहुत व्यापक रूप से मौजूद हैं, जिन पर दुनिया की बड़ी ताकतों और विशेष रूप से साम्राज्यवादी ताकतों की गहरी और ललचाई नज़र दशकों से लगी हुई है। ये ताकतें इस इलाके को हमेशा मैनेज करने की कोशिश करती हैं और इसके लिए मोहरे सेट करती रहती हैं कि किस तरह से मोहरों को लामबंद किया जाए कि ये पूरा इलाका और इस इलाके और वहाँ के संसाधनों से जुड़े फैसले इन ताकतों, खासतौर पर अमेरिका की इच्छा और मर्जी के अनुसार हो सकें। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ने यहाँ पर क्रांति आने के बाद, अब जब नई व्यवस्था आई तो उसके बाद ان سازشوں، ان منصوبوں اور ان نیتیوں کو ناکام بنایا اور علاقے کے بھیتر سوادھینتا کی روحوں کی اور کئی سنگٹھنوں کی مدد کی جو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر امریکی ورچسواد کا ویروھ کر رہے ہیں اور لگاتار کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ تو دیدی، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہو گیا، شروتاؤں سے انمت دے لیتے ہیں۔ تو شروتاؤں، اگلی ملاقات تک بھیا احمد عباس اور دیدی مریم مہردادی کو انمت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم پتر سنسار دیدی مریم اور بھیا احمد عباس سے، اور اب آپ کی سیوا میں آج کی سبھا کا انتم کارکرم وگیان کی ڈگر پیش ہے۔
وگیان کی ڈگر۔
دوستو، کارکرم وگیان کی ڈگر کے ایک انکڑ کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ آج کے کارکرم میں ایران اور دنیا میں گیان وگیان کے کھیتر میں ہونے والی پرگتی کے وشے پر چرچا کریں گے۔ مریم مہردادی اور اختر رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، زنجان وشو ودیالیہ کے شوتھکرتاؤں نے اسٹارچ اور ٹائٹینیم آکسائڈ نینو کڑوں سے یکت ایک بایو ڈیگریڈیبل نینو کمپوزٹ کی کھوج کی ہے، جس کا اپیوگ کھادیہ پیکیجنگ کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ سمندر کھادیہ اور پیے پدارتھوں کی پالیمر پیکیجنگ کے ایک بڑے بھاگ سے پریاورن پردوشن استتو میں آتا ہے۔ یہ ڈیگریڈیبل پیکیجنگ پردوشکوں کا ایک اچھا وکلپ ہو سکتا ہے، لیکن ڈیگریڈیبل سامگری کا اتپادن مہنگا ہے اور کھادیہ پدارتھوں کی انتم قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔
پالیمر پیکیجنگ کسے کہتے ہیں؟ پیٹرولیم آدھارت سامگری کے بدلے جے پولیمیرک سامگری کے وکاس کا اتیادھک مہتو رہا ہے۔ پیٹرولیم آدھارت پلاسٹک سامگری کا اپیوگ عام طور پر پیکیجنگ میں کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کچھ وشیشتاؤں جیسے کچھ حد تک مضبوط، پاردرشی، کم لاگت اور ہلکے وزن کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ پیٹرولیم آدھارت پلاسٹک پیکیجنگ سامگری آسانی سے نشٹ نہیں ہوتی ہے، اور یہ دھرتی پر ٹھوس کچرے کے روپ میں ایکتر ہونے سے گمبھیر سمسیا کے روپ میں دیکھی جا رہی ہے۔
اس طرح کے پلاسٹک کے ہمارے پریاورن میں ہانیکارک پرینام سامنے آئے ہیں، اور اسے ایک خطرے کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میونسپل سالڈ ویسٹ میں 12% پلاسٹک ہوتا ہے، اور اس کچرے کو جلانے کے بعد ہانیکارک زہریلی گیسیں جیسے ڈائی آکسین، فیوران اور مرکری تتھا پولی کلورینیڈٹ بائی فینول واتاورن میں مل جاتی ہیں۔
اس پریوجنا کے شودھکرتاؤں کے انوسار اس پرکار کی پیکیجنگ کے وکاس میں کمی کا مکھیہ کارن پالیمر پیکیجنگ کی تلنا میں بایو ڈیگریڈیبل سامگری کی اچھ قیمت اور ان کی کم کھمتا ہے۔ اس پریوجنا میں بایو ڈیگریڈیبل سامگریوں کی اتپادن لاگت کو کافی کم کرنے کے لیے اسٹارچ اور ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ نینو کڑوں سے یکت ایک نینو کمپوزٹ کا اتپادن کیا گیا تھا، جو انیہ بایو ڈیگریڈیبل سامگریوں کی تلنا میں سستا اور ادھک کشل ہے۔ ویوسائیکرن کے معاملے میں اس پیکیجنگ سامگری کے پرتیک کلو گرام کی قیمت پرتیک کلو گرام اسٹارچ کی قیمت سے لگ بھگ 15% ادھک ہوگی۔ یہ پریاورن اور دھوپ میں بھی تیزی سے خراب ہوتا ہے۔
دوستو، بائیو ڈیگریڈیبل کسے کہتے ہیں؟ वैज्ञानिकों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए तथा प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित की है, जिसके उपयोग पैकेजिंग सामग्री के रूप में किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने ग्वार गम और चिटोसन का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विकसित किया है। ये पॉलीमर ग्वार, बीन्स, केकड़े और झींगा से निकाले गए पॉलीसेकेराइड से बना है। इसमें पानी को सहन करने की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये पानी से ख़राब नहीं होता। ये ग्वार गम कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में पैकेजिंग के उपयोग के लिए बहुत अच्छा है।
जंजान विश्वविद्यालय के संकाय के सदस्य के अनुसार फोटोकैटालिटिक गुणों वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनोकणों की उपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बदले पैकेजिंग नष्ट हो जाती है। इसके अलावा नैनो कंपोजिट की संरचना में इन नैनोकणों की उपस्थिति पैराबैंगनी प्रकाश द्वारा एक साथ संशोधित और कीटाणुरहित होने की क्षमता को प्रेरित करती है। शोधकर्ता के अनुसार इस परियोजना में कई भौतिक रासायनिक परीक्षणों जैसे नमी सामग्री परीक्षण, जल अवशोषण, जल घुलनशीलता, संपर्क कोण और जल बाष्प इत्यादि से उत्पादित पैकेजिंग गुणों का मूल्यांकन करने के लिए पैकेजिंग सामग्री को उपयोग किया जाता है। इस शोध के परिणाम 2018 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रकाशित हुए हैं।
नैनो कंपोजिट एक मल्टीफेज ठोस सामग्री है, जहां एक चरण में 100 नैनोमीटर अर्थात NM से कम एक, दो या तीन आयाम होते हैं। यह सामग्री बनाने वाले विभिन्न चरणों के बीच नैनो स्केल दोहराने की दूरी वाली संरचनाएं होती हैं। नैनो कंपोजिट के पीछे का विचार नैनोमीटर रेंज में आयामों के साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स का उपयोग करना है, ताकि अभूतपूर्व लचीलेपन और उसके भौतिक गुणों में सुधार के साथ नई सामग्री को डिजाइन किया जा सके और उसे बनाया जा सके।
ईरान के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय ने चीन में 2018 अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण प्रतियोगिता जीती। ईरान के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय ने 2018 में आयोजित चीन के डिजाइनिंग और विनिर्माण वैज्ञानिक कार्यों की आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के मैजिक ग्लास को पेश करके खूब सुर्खियाँ बटोरी और फिर इनको विजेता के रूप में चुना गया।
इस प्रतियोगिता में ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन और केन्या सहित दुनिया के 20 देशों को व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रदर्शनी दिखाने और प्रदर्शनी के पहलुओं को समझाने के लिए चुना गया। ये प्रतियोगिताएं वैज्ञानिक ज्ञान पर विश्व सम्मेलन के मौके पर आयोजित की जाती हैं। इसमें अल इल्मुल हिल अर्थात द साइंस ऑफ डिसेप्शन पर चर्चा की जाती है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की श्रेणी में आता है, और ये यांत्रिक और हाइड्रोलिक उपकरणों पर चर्चा करता है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय द्वारा अल हिल पुस्तक में कई डिजाइनों का पुनर्निर्माण किया गया है।
आज़ाद विश्वविद्यालय की अलबुर शाखा के एक नॉलेज बेस्ड कंपनी के शोधकर्ताओं ने कार टैकर्स की डिजाइनिंग, निर्माण और निर्यात करने में सफलता प्राप्त की। अलबुर आज़ाद विश्वविद्यालय के अनुसंधान के कुलपति के अनुसार इस टैकर का उपयोग करके, जिसे कार में स्थापित किया जा सकता है, कार के समय, स्थान, गति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
ये कार ट्रैकर दूर संचार नेटवर्क या GPRS सिस्टम द्वारा मैसेज भेजने और संपर्क को कॉल करने की अनुमति देता है। यह आपको 20 उपग्रह चैनलों से जानकारी प्राप्त करने और स्थान दिशे निर्देशांक द्वारा उन्हें सर्वर पर एक साथ ऑनलाइन मैसेज भेजने और वाहन को कहीं से भी कहीं भी नियंत्रित करने और ट्रैक करने के लिए मानचित्र पर मिलाने की अनुमति देता है।
ट्रैकर कार मालिक की चोरी के समय कार द्वारा तय की गई दूरी के बारे में भी संदेश भेज सकता है। साथ ही इस उपकरण के माध्यम से उस मार्ग के यातायात की रिपोर्ट करना संभव है, जिसे व्यक्ति चुनने का इरादा रखता है।
दोस्तों, यूनिवर्सिटी के वॉइस चांसलर फॉर रिसर्च के मुताबिक इस कार ट्रैकर का एक और एप्लीकेशन ये है कि कार के साथ उपकरण और डिवाइस को स्थानांतरित करने वाली कंपनी या संगठन इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तव में संगठन का प्रबंधक या नियंत्रक ड्राइवर के रास्ते को ट्रैक कर सकता है। ये ट्रैकर कंपनी या संगठन के प्रबंधक को ऑनलाइन यात्रा की गई गति, स्थान और दूरी की रिपोर्ट प्रदान करता है। इस ट्रैकर से कार की सुरक्षा बढ़ जाती है। इस ट्रैकर से कार की सुरक्षा बढ़ने के साथ साथ इस सिस्टम में वायरलेस तरीके से एक्सेसरीज जोड़ने की भी क्षमता है और कार ट्रैकिंग सिस्टम के लिए किसी विशेष सर्वर और पैनल की आवश्यकता नहीं होती। इस ईरानी कार ट्रैकर की कीमत विदेशी मॉडल की तुलना में बहुत कम है और इसे ईरान की स्थितियों और इस देश में उपलब्ध कारों की विशेषताओं के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। ये डिवाइस कार की बैटरी से कनेक्ट किए बिना काम करता है। इसमें उच्च एंटीना शक्ति होती है कि समान बाहरी मॉडल में ये विशेषताएं आम तौर पर नहीं होती। इस ट्रैकर के जरिए कार केबिन के साथ वॉइस कम्युनिकेशन देना भी संभव है। ये डिक्टेटर उत्पादन तक पहुंच गया है और इसे कुछ देशों में निर्यात भी किया जा रहा है।
कंप्यूटर सिमुलेशन द्वारा शोधकर्ता दुनिया के सबसे शक्तिशाली पदार्थ का निरीक्षण करने में सक्षम रहे। इस पदार्थ को परमाणु पास्ता कहा जाता है। ये पदार्थ न्यूट्रॉन स्टार शेल में स्थित होता है और बहुत घने संचारणों के रूप में आता है जो विभिन्न प्रकार के पास्ता के समान होते हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके सिमुलेशन का प्रदर्शन किया। ये सिमुलेशन पहली बार स्टार सेल को तोड़ने के तरीकों को सामने लाने में सफलता इसने हासिल की है। उनके अनुसार ये अनुकरण मनुष्यों को गुरुत्वाकर्षण तरंगों जैसी बड़ी खगोलीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।
मैकगिल विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता के अनुसार न्यूट्रॉन स्टार शेल की ताकत विशेष रूप से शेल के निचले हिस्से से विभिन्न खगोलीय समस्याओं से जुड़ी है। न्यूट्रॉन तारे सुपरनोवा के उत्पाद हैं और बहुत ही घने होते हैं। इन तारों की कोशों के नीचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ सिलेंडर और फ्लैट प्लेट जैसी संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये गोल कोर पास्ता को बहुत सख्त बनाते हैं और परिणाम स्वरूप इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिमुलेशन के अनुसार इन संरचनाओं को तोड़ना स्टील को तोड़ने की तुलना में 10 अरब गुना कठिन है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें इजाज़त दीजिए।
की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। तो अगले ही सभा तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।